ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिलों की 43 सीट पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक लगभग 65% मतदान दर्ज किया गया। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, रांची से राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ मांझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय और ईचागढ़ से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के हरेलाल महतो चुनावी उम्मीदवार हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव हुआ। इसमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा मेघालय में एक एक सीट शामिल है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गोड्डा में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर जिले में सारठ विधानसभा के रंगा सिरसा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर झारखंड की पहचान बदलने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के 18 केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये जन औषधि केंद्र बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्टेशनों पर संचालित किए जाएंगे। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के 50 केंद्रों की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव की 3 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज स्पोर्ट्स एरिना, जांडा चौक स्कूल और गेम जोन चरण 2 सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके साथ ही न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार और संशोधन अधिनियम 2006 को भी निरस्त कर दिया। ये नियुक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थीं। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य संसदीय सचिवों को दी गई सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। सरकार इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यपालिका लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने कहा कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून के शासन पर बल देते हुए कहा कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में वित्त आयोग के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय विकास के लिए वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। सम्मेलन का आयोजन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पानगढ़िया के नेतृत्व में किया जाएगा। सम्मेलन में 16वें वित्त आयोग के सदस्य पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। पीवी सिंधु जापान कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का तीसरा मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में अभी दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।